धर्म और पितृसत्ता। पृष्ठ संख्या 11। सभ्यता के प्रारंभ में जब आदि मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे और कंदमूल फल आदि खाकर जीवन यापन करते थे, तब उनके लिए देवी देवता या धर्म का कोई अस्तित्व नहीं था। आगे चलकर आदि मानवों ने आग के आविष्कार के साथ पशु पक्षियों के मांस को भूनकर खाना शुरू किया। उसने पत्थरों के तेज धार वाले औजारों का निर्माण किया और शिकार करने लगा। इतिहासकारों का मानना है कि इस समय तक मानव समाज में पारिवारिक संबंधों का निर्माण नहीं हुआ था। महाभारत में कुंती के नियोग करने से मना करने पर पांडु का यह कथन इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पूर्व काल में स्त्रियों को कोई रोक टोक न थी, उन दिनों वे स्वतंत्र रहकर भोग विलास की आशा में स्वच्छंदता पूर्वक घूमा करती थी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, वन्य युग की स्त्रियों की उस स्वतंत्र अवस्था की तरफ इशारा करता है। आगे चलकर मानव ने कुल्हाड़ी बनाई, बर्तनों का निर्माण करना सीखा, बांस और घास से झोपड़ी बनाना सीखा और पशुपालन के साथ कबीलों में रहने लगा। इस काल में प्रकृति से भयभीत मानव ने सर्वप्रथम पेड़ों, बांबियों और पत्थरों की पूजा प्रारंभ की। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के कारण पेड़ों और पत्थरों की जगह आदि मानव देवियों की पूजा करने लगे। इस समय बच्चों को माँ के बारे में जानकारी तो थी, लेकिन यह जानकारी नहीं होती थी कि उसका पिता कौन है। इसलिए स्त्री आधारित रक्त संबंध होता था और सारे अधिकार एवं प्रतिष्ठा भी स्त्रियों को ही प्राप्त थे। यहाँ सवाल उठता है कि वे कौन से कारण थे कि मातृसत्ता की जगह समाज में पितृसत्ता का वर्चस्व हो गया और धर्म से इसका क्या संबंध रहा है। एंगल्स पितृसत्ता के उदय के पीछे व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा को मानते हैं। अपनी पुस्तक परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति में मातृसत्ता से पितृसत्ता के परिवर्तन की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एंगल्स कहते हैं कि पाषाण काल में खेती का अधिकारी पूरा कबीला होता था और औरत बागवानी संभालती थी। श्रम के इस आदिम विभाजन के काल में स्त्री और पुरुष पारस्परिक समानता के आधार पर समाज को संगठित करते रहे थे। वस्तुतः अधिक शारीरिक शक्ति पृष्ठ संख्या 12 की अपेक्षा वाले काम पुरुष और हल्के काम स्त्रियां करती थी। धातुओं के संबंध में जानकारी बढ़ने के साथ विकास की संभावनाएं अधिक व्यापक हुई। व्यक्तिगत संपत्ति के लोभ से पुरुष में स्वामित्व की भावना विकसित हुई। वह जमीन का मालिक था, गुलामों का मालिक था और अब स्त्री का भी मालिक बन गया। यहीं से औरत की गुलामी की कहानी शुरू होती है। जिस स्थिति ने घरेलू कामकाज संभालने के कारण और औरत को परिवार में सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर बिठाया था, वही अब औरत की गुलामी का आधार बन गई। सिमोन द बोवार एंगल्स के श्रम विभाजन के साथ औरत की प्राकृतिक स्थिति को भी इसमें जोड़ती हैं। वह सिर्फ तांबे और औजारों की खोज को औरत के दमन का कारण नहीं मानती। उनका मानना है कि मनुष्य की मौलिक चाह दूसरों पर शासन करने की रहती है, इसलिए स्त्री दमन का मौलिक कारण मन की अंतर्वर्ती चेतना है। सिमोन के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आदिम मातृ सत्तात्मक समाज में गर्भधारण में पिता की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं मानी जाती थी, बल्कि यह माना जाता था कि पूर्वजों की आत्मा जीवित बीज के रूप में मातृ गर्भ में प्रवेश कर जाती है। पितृसत्तात्मक संस्थाओं के विकास के साथ पुरुष अपनी संतति के लिए अपने अधिकार का दावा करने को आतुर हो उठा है। इनवर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 33। इस प्रकार स्त्रियों के प्रजनन की जादुई शक्ति ही उसकी गुलामी का कारण बनी। जहां पहले वह अपने पुरुषों के साथ सामूहिक रूप से रहती थी, अब किसी एक पुरुष के अधीन रहने लगी। परिणामतः उसकी कोख से जन्मे बच्चे पिता को भी पहचानने लगे। माँ की जगह पिता को मुख्य स्थान मिला और देवियों की जगह देवों का आविर्भाव हुआ। मातृसत्ता में जो धर्म प्रकृति और देवियों को प्रसन्न करने तक सीमित था, पितृसत्ता में देवों के अस्तित्व में आने के साथ ही उसका संहिताकरण प्रारंभ हो गया। हिंदू पौराणिक ग्रंथों को ही आधार माने तो मातृसत्ता से पितृसत्ता में वर्चस्व हस्तांतरण की यह प्रक्रिया साफ नजर आती है। साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म दरअसल सत्ता और सामंतों द्वारा अपने हित में शासन करने का अस्त्र है। प्रसिद्ध इतिहासकार और समाजशास्त्री विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े का मानना है कि प्राचीन आर्य समाज में ब्रैकेट में ब्रह्मा से व्यास के समय तक भाई बहन, पिता पुत्री, चाचा भतीजी, दादा पोती आदि में हुए शारीरिक संबंधों को सामाजिक मान्यता प्राप्त थी और पुराण काल से पाणिनि के काल तक भारतीयों के बीच अपने मित्र या अतिथि को स्वस्त्री संभोगार्थ देने की प्रथा प्रचलित थी। संदर्भ ग्रंथ भारतीय विवाह संस्था का इतिहास पृष्ठ संख्या 70। यह स्थापना राजवाड़े ने हिंदू धर्म के आधार ग्रंथ महाभारत एवं अन्य पुराणों, वेदों आदि के आधार पर दी है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्म का उद्भव मानव विकास यात्रा के साथ हुआ, जिसमें भगवान की कल्पना की गई ताकि शासन करने में कोई बाधा न आए। पृष्ठ संख्या 13। महाभारत में कई ऐसी कहानियां मिलती हैं जिनसे ज्ञात होता है कि वन्य युग में मानव को रिश्तों का ज्ञान नहीं था। हरवंश पुराण के दूसरे अध्याय के अनुसार वशिष्ठ प्रजापति की बेटी शत्रुपा युवावस्था प्राप्त होने के बाद अपने पिता वशिष्ठ के साथ पत्नी भाव से रही। इसी ग्रंथ के सातवें अध्याय में वर्णन मिलता है कि मनु ने अपनी बेटी इला से शारीर संबंध स्थापित किया। हरवंश पुराण के तीसरे अध्याय में उल्लेख है कि ब्रह्मा के दक्ष पुत्र ने अपनी बेटी ब्रह्मा को दी, जिससे नारद का जन्म हुआ। जानवी ब्रैकेट में गंगा ने अपने पिता जन्हू के साथ संभोग किया। संदर्भ ग्रंथ वही पृष्ठ संख्या 27। ऋग्वेद के 10वें मंडल और अथर्ववेद के 18वें मंडल में यम यमी की कहानी कही गई है। ये दोनों सहोदर भाई बहन थे। जब यमी ने भाई यम से संभोग करने के लिए कहा तो यम ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि वरुण के दूत यह देखकर क्रोधित होंगे। इस पर यमी ने कहा कि देव क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि उन्हें हमारा यह कृत्य पसंद आएगा। ब्रैकेट में उसंति दया से अमृतवास एतद। इसी प्रकार हर्यश्व का पुत्र यदु था, जिसके नाम पर यदु वंश चला। इसी वंश में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हरवंश पुराण के 237वें अध्याय के अनुसार अपने पिता की बहन की 5 बेटियों के साथ यदु ने शारीरिक संबंध बनाया। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि उस समय का धर्म मुख्यतः संतानोत्पत्ति था, जहां नैतिकता और रति के लिए संबंध निषेध नहीं था। विस्तृत धरती पर राज करने के लिए उन्हें प्रजा की आवश्यकता थी, इसीलिए वे घर के पास अग्नि कुंड जलाकर रखते थे, जिससे जंगली जानवरों से उनकी रक्षा होती थी और अग्नि के पास ही गर्भाधान भी संपन्न होता था। चूंकि उस समय का समाज मातृसत्तात्मक था, इसीलिए संतति के नामकरण का आधार भी माँ होती थी। जैसे अदिति की संतति अदित्या, दिति की दैत्या, दनु की दानव, क्रदु की क्रादेव्या, वसु से वासव आदि। मातृसत्ता का अस्तित्व समाप्त होने के बारे में राजवाड़े स्त्री पुरुष संबंधों की तीन अवस्थाओं की चर्चा करते हैं कि सिर्फ पशु अवस्था में ही एक पुरुष और अनेक स्त्रियों वाला समाज होता था, फिर समूह अवस्था में अनेक पुरुषों और अनेक स्त्रियों में मिला जुला लैंगिक संबंध होता था। इस समय स्त्रियों को जनी ब्रैकेट में जन्म देने वाली और पुरुष को जन ब्रैकेट में जन्म देने वाला कहा जाता था। आगे चलकर रुचि अभिरुचि के अनुसार स्त्री पुरुषों की जोड़ियां बनने लगी और अंत में बहुत प्रयत्नों के बाद एक पुरुष और एक स्त्री वाली व्यवस्था प्रचलित हुई। संदर्भ ग्रंथ भारतीय विवाह संस्था का इतिहास, पृष्ठ संख्या 113। महाभारत में वर्णित गालब कथा से भी स्त्री की स्वतंत्र अवस्था का पता चलता है। जब यौन शुचिता की अवधारणा पितृसत्ता द्वारा उस पर नहीं लादी गई थी, माधवी ययाति की बेटी थी। ययाति को 800 श्याम कर्ण घोड़े गालब को देने थे। इस पृष्ठ संख्या 14। कार्य में माधवी ने पिता ययाति की मदद की। माधवी इक्ष्वाकु राजा के पास एक पुत्र पैदा होने तक रही। उसके बदले में इक्ष्वाकु ने उसे 200 घोड़े दिए। इस प्रकार काशी नरेश, भोजपुर नरेश और विश्वामित्र के साथ रहकर एक एक पुत्र के बदले 200 घोड़े माधवी को मिले। माधवी ने इस तरह 800 घोड़े लाकर पिता ययाति को दिए। तब ययाति ने उस घोड़े को गालब ऋषि को देकर गुरु दक्षिणा पूरी की। इस तरह की कहानियां हैं, जिससे पता चलता है कि शुरू में पातिव्रत्य धर्म नहीं था। औरत पति के होते हुए भी दूसरे पुरुषों के साथ रह सकती थी। कृषि युग में आकर समाज पूर्णतः पितृसत्तात्मक हो गया। पशु और गुलाम के साथ साथ अब स्त्री भी पितृसत्ता के अधीन हो गई। धर्म का संहिताकरण होने लगा। जो स्त्री समाज में सबसे ऊंचे पायदान पर थी, अब उसकी कीमत एक गाय के बराबर ब्रैकेट में दारहा गावह दारगम पाणिनी रह गई। स्त्रियों की स्वतंत्रता अब धर्म के अधीन थी और धर्म पुरुषों के अधीन। यहाँ यह भी गौरतलब है कि इस समय स्त्रियों और दलितों को शिक्षा से भी वंचित कर दिया गया, ताकि उन पर आसानी से शासन किया जा सके। जो लोग धर्म को अलौकिक और धर्मशास्त्र को सार्वकालिक मानते हैं, उन्हें खुद खुली आंखों से शास्त्रों को पढ़कर विचार करना चाहिए कि कैसे स्त्रियों और शूद्रों को धर्म षड्यंत्र के द्वारा अंत्यज बनाया गया। पीढ़ी दर पीढ़ी शासन के द्वारा उनमें गुलामी की मानसिकता का निर्माण किया गया और उन्हें बताया गया कि यही तुम्हारा धर्म है। जैसा कि पहले कहा गया, पवित्र धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारे समाज में मित्रों और अतिथियों को संभोग के लिए स्वस्त्री देने की सर्वमान्य परंपरा थी, यहाँ तक कि ये धर्म निर्माता खुले में और सार्वजनिक जगहों पर भी संभोग करने से गुरेज नहीं करते थे। महाभारत आदि पर्व के 63वें अध्याय में व्यास लिखते हैं कि महर्षि पराशर ने मत्स्यगंधा के साथ, जो उस समय कुंवारी थी, खुले में संभोग। इस संभोग के परिणाम स्वरूप ही व्यास का जन्म हुआ। महाभारत के ही अनुशासन पर्व के 2 अध्याय में सुदर्शन और उसकी भार्या ओघवती की कथा का वर्णन है। सुदर्शन अपनी पत्नी से कहता है कि अगर कोई अतिथि तुमसे संभोग का आग्रह करता है तो तुमको हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आतिथ्य धर्म है। संयोगवश एक बार जब सुदर्शन घर से बाहर होता है तो एक ब्राह्मण अतिथि उसके यहाँ आता है। जब वह ब्राह्मण ओघवती से संभोग की इच्छा जाहिर करता है तो ओघवती सहर्ष उस ब्राह्मण की इच्छा पूर्ति करती है। बाद में जब सुदर्शन को घर आकर इस घटना का पता चलता है तो वह अति प्रसन्न होता है। वह कहता है, आज मैं कृतकृत हो गया। अपने को धन्य मानते हुए सुदर्शन ने पतिव्रत धर्म का उचित रीति से पालन करने के लिए पत्नी की पीठ ठोकी। पितामह भीष्म पोते धर्मराज से कहते हैं कि इस सुकृत्य के कारण सुदर्शन की अमर कीर्ति त्रिभुवन में अक्षय फैल गई। पृष्ठ संख्या 15। और उसे इंद्रलोक प्राप्त हुआ। यहाँ पितामह का शब्द सुकृत्य और सुदर्शन का कृतकृत होना ध्यान देने योग्य है, जो इसकी धार्मिक मान्यता को स्पष्ट करता है। दूसरी कहानी इस परंपरा की बीज की स्थिति को दर्शाती है। कथा शांति पर्व के 266वें अध्याय की है। ऋषि गौतम का पुत्र चिरकारी था। संयोग से गौतम जब आश्रम से बाहर थे, उसी समय इंद्र आश्रम में अतिथि के रूप में पधारे और चिरकारी की माता से संभोग कर चले गए। गौतम को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए। इससे स्पष्ट होता है कि धीरे धीरे पितृसत्ता ने स्त्रियों पर अपना सिकंजा कसना शुरू किया। इस कार्य के लिए धर्म उसका सबसे बड़ा हथियार बना। अब उसने पर पुरुष गमन तो दूर, स्त्रियों के लिए मनसा वाचा कर्मणा पति के प्रति समर्पित रहने का नियम बनाया। इसे रेणुका और जमदग्नि की कहानी से भली भांति समझा जा सकता है। जमदग्नि की पत्नी रेणुका नदी में स्नान करने गई थी। वहां मैथुन रथ चित्ररथ गंधर्व को देखकर उसका मन कामातुर हो गया। इस बात का पता चलते ही जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम से उसकी हत्या करवा दी। पितृसत्ता को मजबूत होती स्थिति को यहाँ देखा जा सकता है कि हिंसा और हत्या कैसे धर्म के अंग बनते चले गए। दरअसल सवर्ण पितृसत्तात्मक समाज द्वारा बड़े प्रयत्नों के बाद स्त्री और शूद्र को गुलाम बनाया गया। इसीलिए इस स्थिति को बनाए रखने के लिए उसने धर्म की आड़ में उत्पीड़न के नए नए तरीके इजाद किए। इसे और स्पष्ट करती हुई सिमोन कहती है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मातृसत्तात्मक समाज में स्त्री को आचरण की सुविधा थी तथा स्त्री से शुद्धता और शुचिता की अपेक्षा कम की जाती थी। व्यभिचार के विरोध इतने कड़े नियम नहीं थे। अब पितृसत्ता में चूंकि औरत पुरुष की संपत्ति थी, इसीलिए विवाह के पहले कौमार्य भंग न होना तथा आजीवन पतिव्रता बने रहना उसका परम धर्म बन गया। व्यभिचारिणी के लिए समाज में मृत्यु दंड निश्चित किया गया। संदर्भ ग्रंथ स्त्री उपेक्षिता पृष्ठ संख्या 72। यहाँ यह बताना जरूरी है कि पितृसत्ता के पहले जाति का निर्धारण जन्मना न होकर कर्म के आधार पर था। इसीलिए शूद्र और स्त्री दोनों वेद के ऋचा निर्माताओं में सम्मिलित थे। दूसरी बात ये कि वन्य युग में ही आर्य, अनार्य एवं अन्य जातियों के रक्त सम्मिश्रण हो चुके थे। उच्च निम्न यहाँ तक कि चांडाल कहे जाने वाली जातियों, टोलियों, कबीलों के बीच वैध अवैध दोनों प्रकार के संबंध स्थापित हो चुके थे। वर्ण व्यवस्था और पितृसत्ता को स्थापित करने वाले वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, भारद्वाज, गौतम आदि श्रेष्ठ ऋषिगण किसी न किसी नीच कुल की स्त्री से पैदा हुए थे। खुद मनु शूद्र बनने के कारण इस प्रकार गिनता है। युद्ध में कैद हुआ व्यक्ति, उदर पूर्ति के निमित्त दासत्व को स्वीकार करने वाला व्यक्ति, घर की दासी का पुत्र, खरीदा हुआ गुलाम, दान में मिला हुआ मनुष्य जिसके पिता आदि भी दास हो और राजदंड से बचने वाला दास शूद्र कहलाते हैं। पृष्ठ संख्या 16। ध्वजा हृतो भक्ति दासे गृहजः कृत दात्रिमौ पैतृको दंड दासस्य सप्तते दास्यो नमः। संदर्भ ग्रंथ मनु 8/415 ब्रैकेट में। अब इन शूद्रों की संतति को ब्राह्मण कौन बनने देता, क्योंकि धर्म राजसत्ता का सबसे अमोघ अस्त्र साबित हुआ था, जो मुख्यतः शूद्रों और स्त्रियों को वश में रखने के लिए ही बनाया गया था। धर्म संहिता में यह नियम जोड़ा गया कि गुलाम के बच्चे गुलाम ही होंगे और ब्राह्मण के बेटे ब्राह्मण और स्त्री पुरुषों की दासी होगी। इसीलिए स्त्रियों की वैयक्तिक स्वतंत्रता को सबसे पहले छीना गया। ताज्जुब तो तब होता है जब अपने स्वार्थ और अपनी नपुंसकता को ढकने के लिए यही देवगण अपनी पत्नी को पर पुरुष के पास भेजने तक से नहीं हिचकते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देवर न्याय या नियोग है, जो पर पुरुष गमन के बावजूद धर्म सम्मत माना जाता था, क्योंकि इस कार्य के लिए आदेश देने वाला व्यक्ति स्वयं पति होता था। महाभारत में दो बार नियोग का उल्लेख मिलता है। पहली बार व्यास द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है तथा दूसरी बार पांडु अपनी पत्नियों कुंती और माद्री से नियोग करवाता है। चूंकि नियोग में पर पुरुष के साथ संभोग करना होता था, इसीलिए कुंती धर्म की दुहाई देती है और पांडु को अपने वीर से संतान उत्पन्न करने के लिए कहती है, तो पांडु तत्काल धर्म को ताक पर रख देता है और कुंती को धर्मोपदेश देता है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन, यह सनातन धर्म है और स्त्रियों के लिए लाभप्रद भी। अब चूंकि खुद पति व्यभिचार के लिए पत्नी से कहता है, इसलिए यह धर्म के अनुरूप हो गया। लेकिन कुंती कर्ण की कथा पांडु से नहीं कह सकती, क्योंकि यह धर्म की नजर में पाप था। तात्पर्य यह है कि धर्म का निर्माता पुरुष वर्ग जो बोल दे वही धर्म है और पुरुष वही बोलते थे जिससे उसका स्वार्थ जुड़ा होता था। वन पर्व के 307वें अध्याय में सूर्य 8 वर्षीय कुंती को धर्म समझाता है। हे सुंदरी, कन्या शब्द की उत्पत्ति कम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चाहे जिस पुरुष की इच्छा करने वाली, इसलिए तुम मेरे साथ संभोग करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। विवाह आदि संस्कार सब कृत्रिम है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फिर प्रश्न उठता है कि सूर्य ने सामाजिक रूप से कर्ण को क्यों नहीं स्वीकारा? उत्तर स्पष्ट है कि जो धर्म पितृसत्ता द्वारा निर्मित हुआ था, खुद वह उस पर आकर लागू नहीं होता। शोषण के शिकार शासित वर्ग होते हैं, शासक नहीं। कुछ लोग एक झटके में सारे तर्क को यह कहकर खारिज कर देंगे कि नियोग में शारीरिक संपर्क नहीं किया जाता था और देवता ऋषि के आशीर्वाद से बच्चे पैदा होते थे, क्योंकि वह त्रेता सतयुग था। आज का मानव भी इन अंधविश्वासों को जिंदा रखना चाहता है, जबकि नियोग से संबंधित कहानियां ही बताती हैं कि नियोग कैसे किया जाता था। पृष्ठ संख्या 17। भोली भाली और मूर्ख जनता के लिए इस तरह की कहानियां फैलाई जाती थी ताकि उनके देवत्व पर प्रश्न चिन्ह न लगे। यहाँ प्रश्न उठता है कि अगर नियोग विधि में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं होता, तो फिर अंबिका के मासिक धर्म पूरा होने पर ही सत्यवती व्यास को क्यों बुलाती है? इतना ही नहीं, आगे की प्रक्रिया से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। सत्यवती अंबिका को सजे हुए सेज पर बिठाकर धीरे से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कौशल्ये देवस्तस्ति से दद्यावत्या नु प्रवेश्यति अप्रमत्ता प्रतीक्षण सी सॉरी निशिये हया गम्यति। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अर्थात, हे कौशल्ये, आज आधी रात को तुम्हारा देवर तुम्हारे पास आएगा, तुम सावधान होकर उसकी प्रतीक्षा करना। आगे की पंक्तियों में और स्पष्ट कहा गया है, ब्रैकेट में, संभव हुआ तया सार्धर मातु प्रिय चिकी परया। व्यास ने माता का प्रिय साधने के लिए अंबिका के साथ संगम किया, इसीलिए यह स्पष्ट है कि खीर फल और आशीर्वाद से बच्चे पैदा होने की कहानी झूठी है। युधिष्ठिर, जो नाजायज संतान था, को धर्म का प्रतिपूर्ति माना जाता है। इस महान महाधर्मराज का स्त्री विषयक दृष्टिकोण देखने लायक है। इससे यह भी पता चलता है कि धर्म निर्माताओं ने स्त्री शोषण के कैसे कैसे तरीके अपनाए थे। द्रौपदी का प्रसंग युधिष्ठिर को एक बुद्धिजीवी बलात्कारी साबित करता है। युधिष्ठिर अनुज वधु द्रौपदी के रूप लावण्य पर आकर्षित होकर धर्म की नई व्याख्या प्रस्तुत करता है और द्रौपदी को पांचों भाई की पत्नी बनाकर ज्येष्ठ होने के नाते उस पर पहला अधिकार अपना मानता है। इतना ही नहीं, इस बहाने वह अपने भाइयों के बीच फूट भी नहीं पड़ने देता। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। हद तो तब होती है जब वह अपने इस कुकृत्य को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलता है और आगे चलकर द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा देता है। द्रौपदी के पिता द्रुपद के पास युधिष्ठिर की सफाई देने लायक है। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। हे महाराज, धर्म एक सूक्ष्म तत्व है जिसकी गति हम लोग जान नहीं सकते, पर पहले के लोग जिस मार्ग से गए हैं, हम लोग भी उसी मार्ग से चलते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ और न मेरा मन कभी अधर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है। माता कुंती ने भी यही आज्ञा दी है, जो बात मेरे मन में भी बैठ गई है। अतः हे राजन, बिना विचारे इस धर्म का पालन करें। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ युधिष्ठिर के मन में बैठे चोर को देखा जा सकता है, जो कुंती और धर्म के बहाने अपना हित बड़ी चतुराई से साध लेता है। इतना कुछ होने के बावजूद युधिष्ठिर के स्त्री के बारे में जो विचार हैं, वे धर्म के आवरण में छुपे उसके भेड़िए वाले चेहरे को दिखाते हैं। वह कहता है, अग्नि लकड़ियों से, समुद्र नदियों से, यमराज मृत प्राणियों से और स्त्रियां पुरुषों से कभी तृप्त नहीं होती। वह नई नई घास चरने वाली गौओं की तरह नित नए पुरुष ढूंढती है। उसके अनुसार स्त्रियां इतनी बुरी होती हैं कि यदि किसी पुरुष की 100 जिह्वाएं हो, वह 100 वर्ष तक जिए, पृष्ठ संख्या 18, तथा उसे स्त्रियों के दोष बखान करने के सिवा कोई दूसरा काम न हो, तो भी वह उनके दोषों को बिना कहे मर जाएगा। ये है धर्मराज युधिष्ठिर के स्त्री संबंधी विचार। अब मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले राम की बात सुनिए। वह सुनी सुनाई बातों में आकर बिना कुछ दलील सुने सीता का परित्याग करते हैं और सीता की उपमा कुत्ते के जूठे घी से देते हैं। अब तुम सच्चरित या दुष्चरित जो भी हो मैथिली, मैं तुम्हारा उपभोग नहीं कर सकता। तुम कुत्ते के चाटे जूठे घी की तरह हो, जिसका उपभोग संभव नहीं। संदर्भ ग्रंथ वाल्मीकि रामायण 3.257.13। अब जो राम विप्र धेनु सुर और संत के हित चाहने के लिए मनुज अवतार लेते हो, वे स्त्रियों और शूद्रों को तो दंडित करते ही रहेंगे। मतलब यह कि इन देवताओं की निगाह में स्त्री और शूद्र गाय से भी गए गुजरे हैं, इसीलिए इन्हें अपने स्वामी के अधीन ही रहना चाहिए, वह भी जन्म से मृत्यु पर्यंत। बचपन में माता पिता के अधीन, जवानी में पति के अधीन और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन स्त्रियों को कभी स्वतंत्र नहीं छोड़ना चाहिए। संदर्भ ग्रंथ मनुस्मृति 9-3। इस प्रकार स्त्रियों और शूद्रों को गुलाम बनाने के बाद जो अगला काम किया गया वह था गुलामी की मानसिकता तैयार करना, अर्थात इनके अंदर हीन भावना को भरना, ताकि ये मानसिक रूप से अपंग हो जाए, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी बिना प्रयास के गुलाम पैदा होते जाए। यह कार्य भी धर्म के द्वारा ही संपादित किया गया। पहले इन सवर्ण पितृसत्तावादियों ने खुद को ज्ञान विज्ञान से संपन्न शक्तिमान साबित किया और स्त्री को अज्ञानी, कमजोर और पाप का द्वार साबित किया। अब बड़ी चतुराई से इसे पूर्व जन्म की कथा से जोड़ दिया गया, ताकि अगले जन्म के काल्पनिक सुख की मरीचिका के जाल में फंसकर बिना प्रतिवाद किए वह जीवन भर गुलामी करती रहे। वह प्रतिवाद न करे, क्योंकि भगवान और पति को मंद बुद्धि कहने वाली स्त्री गौ हत्या का पाप करेगी। चूंकि बुद्धि, वैभव और बल पूर्व जन्म की देन होते हैं और यह सब ऊपर आकाश में तय होते हैं, इसलिए स्त्रियों और शूद्रों के लिए जो धर्म बनाया गया है वे उसका पालन मन, कर्म, वचन से करें, ताकि अगले जन्म में उन्हें सुख मिले। श्री कृष्ण कहते हैं, श्रियान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः पर धर्मो भयावह। संदर्भ गीता 3:35 अर्थात अपना धर्म गुणहीन हो, बुरा भी हो, तो वह अच्छा है। दूसरे का धर्म सुचारू रूप से होने पर भी अच्छा नहीं। अपने धर्म के पालन में मर जाना अच्छा है, क्योंकि दूसरे का धर्म खतरे से भरा है। तात्पर्य ये कि शूद्र अगर शिक्षा ग्रहण करे तो यह पाप है। यही कारण है कि शंबुक द्वारा तपस्या करने पर राम उसका वध कर देता है। कैसा कूटनीतिक वाक्य है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। और स्वयं कृष्ण क्षत्रिय होकर ब्राह्मण की तरह उपदेश दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार तो पृष्ठ संख्या 19, प्रसव करने वाली दाई को डॉक्टर होना चाहिए और लुहार कुमार को इंजीनियर। धर्म सवर्णों को यह अधिकार नहीं देता कि वह डॉक्टर और इंजीनियर बने। फिर आज के सवर्ण जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फेस क्रीम और ब्रा पैंटीज बेच रहे हैं, वह कौन सा स्वधर्म है? बहरहाल इन सत्ता तंत्रों के द्वारा ऐसा चक्रव्यूह रचा गया ताकि स्त्री और शूद्र को जन्म जन्मांतर के लिए गुलाम बनाया जा सके। यदि शूद्र पुराने वस्त्र पहनता है, ब्राह्मण का जूठा खाता है और ऐसा वह मन कर्म वचन से करता है तो उसके पूर्व जन्मों का सारा पाप धुल जाता है और अगले जन्म में उसे इंद्र की पदवी मिलती है, अर्थात राजा बनता है। यह है स्वधर्मे निधनम श्रेयः का असली रूप। जो स्त्री या शूद्र स्वधर्मे निधनम श्रेयः का पालन करते हुए मर खप गए, धर्म शास्त्रों में आदर पूर्वक उनका गुणगान किया गया और जिसने थोड़ी सी भी स्वतंत्रता की बात की उसे जीते जीतो जमकर यातना दी गई। मरने के बाद भी नरक में ढकेल कर ऐसी ऐसी विभत्स सजा की कल्पना की गई जिसे सुनकर बाद की पीढ़ी स्वधर्मे निधनम श्रेयः की अबोध और अंतहीन मार्ग पर चलते रहे। यही कारण है कि कुंती, मंदोदरी, तारा जैसी स्त्रियां पितृसत्ता के बनाए गए नियम पर चली। इसीलिए कई कई पुरुषों के साथ संभोग करने पर भी धर्म शास्त्र में अक्षत यौवना, प्रातः स्मरणिया आदि की उपाधि से विभूषित की गई। मतलब साफ है, पति और स्वामी की बात मानो तो देवी पूज्या, अन्यथा वैश्या कुल्टा और पाप का द्वार। धर्म निर्माताओं को इस बात का भय भी था कि कहीं शोषित जन संवेदनात्मक स्तर पर आपस में जुड़ न जाए, ऐसा होने पर उनकी सत्ता को चुनौती मिल सकती थी। इसीलिए उसने धर्म में ऐसे प्रावधान बनाए ताकि स्त्री और शूद्रों के बीच हमेशा दूरी बनी रहे। इसके लिए धर्म के कड़े प्रावधान किए गए। अगर कोई सवर्ण स्त्री सवर्ण पर पुरुष के साथ छुपकर संभोग करती है तो उसके लिए हल्की फुल्की सजा का प्रावधान किया गया, लेकिन अगर वह किसी शूद्र के साथ संभोग करती है तो मनु कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन, शूद्र गामिनी कुल्टा को सरेआम कुत्तों को खिलाया जाए इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। पृष्ठ संख्या 9-14 मनुस्मृति। इसीलिए इन्वर्टेड कॉमा ओपन, पति चाहे शराबी जुआरी ही क्यों ना हो, स्त्री अपने पति की सेवा करने से मना नहीं करती है, तो उसका आभूषण और सारा सामान छीन कर 3 महीने के लिए घर से निकाल दो, अपने आप ठिकाने आ जाएंगी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ मनुस्मृति 8-3-71। और अगर पत्नी शराबी जुआरी हो तो मनु का धर्म गिरगिट की तरह रंग बदलता है इन्वर्टेड कॉमा ओपन। फौरन दूसरी शादी कर लो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ मनुस्मृति 9-66-68। ये धर्म निर्माता इतने चतुर थे कि इन्हें मानव मनोविज्ञान का खासा ज्ञान था, इसीलिए ये स्त्रियों को मानसिक स्तर पर वश में रखने के पक्षधर थे। स्वयं मनु ने कहा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कि स्त्रियों को काम में लगाए रखो, वह खुद थककर सो जाएंगी और पर पुरुष का स्मरण भी नहीं कर पाएंगी। पृष्ठ संख्या 20। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैयक्तिक संपत्ति की अवधारणा के साथ जब पितृसत्ता अस्तित्व में आई तो उसने उत्पादन में वृद्धि के लिए स्त्री और शूद्र को गुलाम बनाकर उस पर अधिकार किया। फिर इस स्थिति को पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित करने के लिए जो कानून बनाया गया उसे धर्म का नाम दिया गया। चूंकि दुनिया के हरेक भाग में सभ्यता के विकास की प्रक्रिया एक जैसी रही है, इसलिए दुनिया के प्रत्येक धर्म में स्त्रियों और गुलामों के लिए एक से नियम बनाए गए हैं। कुरान की आयत में कहा गया है कि इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तुम्हारी स्त्रियां तुम्हारे अनाज के खेत में भी हैं, इसलिए तुम अपने खेत में जैसे भी चाहो जा सकते हो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। प्रश्न यह है कि आज के संदर्भ में जहां स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, साथ ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होती जा रही हैं, धर्म की क्या प्रासंगिकता है जब स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों में 50 से अधिक संविधान संशोधन हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो फिर हजारों हजार साल पूर्व बने इन जड़ संहिताओं और कानून की आज क्या प्रासंगिकता है? आउटडेटेड हो चुके इस धर्म को हम कब तक धोते रहेंगे? स्पष्ट है कि हम जब तक अंधविश्वासी बने रहेंगे तब तक धर्म प्रजातंत्र का सांप्रदायिक हथियार बनता रहेगा। ऐतिहासिक प्रक्रिया में धर्म को विभिन्न कालखंडों में निर्मित संविधान के रूप में देखें तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पितृसत्ता, धर्म, वर्ण व्यवस्था जैसी चीजों को ढोकर हम आधुनिक होने का ढोंग रचते हैं। चूंकि पितृसत्ता द्वारा बनाए गए इस धर्म को से आज भी पुरुष वर्ग ही फायदा उठाता है, इसलिए किसी न किसी रूप में वह उसे बनाए रखना चाहता है। सती प्रथा जैसे रिवाजों के समर्थन में की मानसिकता इसी की उदाहरण है। पंडिता रमाबाई ब्रैकेट में 1858-1922 के पिता अनंत शास्त्री ने जब अपनी 9 वर्षीय पत्नी को पढ़ाने का निर्णय लिया तो उन्हें गांव छोड़ना पड़ा और जंगल की शरण लेनी पड़ी। आज भी पितृसत्ता और धर्म के समर्थक इतने क्रूर और खतरनाक हैं कि प्रेम करने वालों को जिंदा जलाते हैं और स्त्रियों को नंगा करके सरेआम घुमाते हैं। स्वतंत्र भारत के निष्पंद कानून के रहते यह सब हो रहा है। क्या आज भी हमारा समाज मनु के बनाए संविधान द्वारा ही संचालित नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो हम अपना कौन सा चेहरा लेकर विश्व मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने का दम भरते हैं? किसी भी तंत्र का यदि एक अंग खराब हो तो वह तंत्र बीमार कहलाता है और सभी सही काम नहीं कर पाता। फिर आधी से अधिक आबादी को गुलाम और अपंग बना देने वाले संहिताओं और धर्म की झूठी पोथियों को ढोकर हम कैसे स्वस्थ और प्रगतिशील प्रजातंत्र को बचाए रख सकते हैं? पितृसत्ता ने अपना वर्चस्व स्थापित होने के साथ ही धर्म को हथकंडे की तरह इस्तेमाल कर स्त्रियों के शोषण की एक लंबी प्रक्रिया शुरू की जो आज भी जारी है। व्यवस्था और धर्म का यह रूप स्त्रियों दलितों की स्वतंत्र चेतना का निषेध करता है, इसलिए त्याज्य है। संदर्भ ग्रंथ विश्वनाथ काशी राजवड़े की पुस्तक भारतीय विवाह संस्था का इतिहास 1988। दूसरा, रजनीकांत शास्त्री की पुस्तक हिंदू जाति का उत्थान और पतन, प्रकाशन किताब महल, इलाहाबाद 1940। तीसरा, सिमोन द बोवार की पुस्तक स्त्री उपेक्षिता, प्रकाशन सरस्वती विहार, दिल्ली 1990। चौथी पुस्तक है के एम कपाड़िया की पुस्तक भारतवर्ष में विवाह और परिवार, मोतीलाल बनारसी, दिल्ली 1963। पांचवा, महाभारत, गीता प्रेस, गोरखपुर। समाप्त।